अध्याय 11 विद्यापति के कृष्ण। कृष्ण के विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार की शंकाएं उठाई हैं और उनका विविध प्रकार से समाधान किया गया है, किंतु कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। उनके विषय में मुख्य रूप से ये समस्याएं उठाई जाती हैं। पहला, कृष्ण सांसारिक मानव नहीं, देवता थे। उनकी स्थिति केवल मानसिक है। कुछ लोग उन्हें सांप्रदायिक देवता, कुछ वन देवता तथा अन्य लोग सौर देवता मानते हैं। अनेक विद्वानों के मतानुसार कृष्ण नामक अनेक व्यक्ति थे जिनके चरित्रों का समन्वय होकर एक कृष्ण का चरित्र बन गया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार कृष्ण व्यक्तिवाचक नाम नहीं है, उपाधि सूचक। वास्तविक नाम वासुदेव है। बालकृष्ण अमीरों के देवता हैं। बालकृष्ण के आख्यान पर ईसा के चरित्र का प्रभाव है। कृष्ण के आविर्भाव के विषय में विद्वानों में मत ऐक्य नहीं। कृष्ण का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वहाँ वे अपने पौत्र विष्णु को जीवनदान करने के लिए अश्विनी कुमारों की स्तुति करते हैं। उक्त संहिता में कृष्ण नामक एक असुरकामी आख्यान मिलता है जो इंद्र द्वारा पराजित हुआ था। आगे चलकर कृष्ण आंगिरस का उल्लेख कौशितकी ब्राह्मण में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है, जिन्हें घोर आंगिरस का शिष्य कहा गया है। वहाँ आंगिरस ने यज्ञ की नवीन व्याख्या की है और तप, दान, अहिंसा आदि को उसकी दक्षिणा बताई है। ऋग्वैदिक आंगिरस कृष्ण तथा कृष्णासुर में कोई संबंध सूत्र ज्ञात नहीं होता, किंतु शेष स्थली पर आंगिरस शब्द की उपस्थिति ध्यान आकृष्ट करता है। फिर भी इन स्थलों पर उल्लिखित कृष्ण की एकता के संबंध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। छांदोग्य उपनिषद के ज्ञान विपासु देव की पुत्र कृष्ण का संबंध वार्ष्णेय कृष्ण से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही देवकी के पुत्र हैं, दोनों ही ज्ञानी भी। प्रथम यज्ञ की नवीन व्याख्या से संतुष्ट हो जाते हैं तथा द्वितीय गीता का उपदेश देते हैं, किंतु इस विषय में विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है। गर्व, गुरियर्षण, हेमचंद्र तथा राय चौधरी आदि विद्वान छांदोग्य उपनिषद, महाभारत और पुराणों के कृष्ण को एक ही मानते हैं, जबकि श्री एडी कुशालकर आदि विद्वान छांदोग्य उपनिषद, महाभारत और पुराणों के कृष्ण को एक ही मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है। हरेक विद्वान महाभारत तथा पुराणों के कृष्ण को एक नहीं मानते, क्योंकि महाभारत में गोप कृष्ण के चरित्र का संदर्भ नहीं मिलता और प्राचीन पुराणों में कृष्ण तथा पांडवों के संबंध का उल्लेख है। इस प्रकार कृष्ण की एकता तथा अनेकता को लेकर विद्वानों ने बड़ा उफाफो किया है। बौद्ध साहित्य में कृष्ण का उल्लेख दो स्थानों पर मिलता है, गत जातक तथा महाउमग्ग जातक में। गत जातक की कथा का कुछ सीमा तक भागवत पुराण की कृष्ण कथा का लौकिक अथवा विकृत रूप कहा जा सकता है तथा महाउमग्ग जातक के कृष्ण रूपासक्त होकर चांडाल कन्या जम्बावती से विवाह करते हैं। जैन परंपरा में कृष्ण की गणना 63 शलाका पुरुषों में की गई है। उनकी मान्यता के अनुसार वे नवे वासुदेव हैं। ब्राह्मण तथा जैन कृष्ण का स्थूल रूप तो प्रायः समान ही है, किंतु दोनों के सूक्ष्म विवरण में बड़ा भेद है। मथुरा, पहाड़पुर, मंडोर, सूरतगढ़ तथा बादामी में कृष्ण जन्म से संबद्ध अनेक प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्म से संबद्ध एक शिलापट्ट प्राप्त है, जिसमें वासुदेव कृष्ण को सूप में सुलाकर यमुना पार कर रहे हैं। इस पट्ट का निर्माण काल ईसा के पहली शती माना जाता है। दूसरे शिलापट्ट में काली दमन का दृश्य अंकित है तथा तीसरे में गोवर्धन धारण का। इनका निर्माण काल क्रमशः 5वीं और 6वीं शती अनुमित है। पहाड़पुर की मूर्तियों में धेनु को वध, यमलार्जुन उद्धार तथा मुष्टिक और चाड़ूर के साथ मल्ल युद्ध के दृश्य दिखाए गए। एक मूर्ति में कृष्ण किसी गोपी के साथ खड़े हैं, संभवतः यह राधा है। इन मूर्तियों का निर्माण काल 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। कदाचित यह राधा का प्राचीनतम मूर्तिगत प्रमाण है। मंडोर तथा सूरतगढ़ में भी अनेक गोकुल लीलाओं को किरण चित्र तथा मूर्तियां मिली हैं। इनका समय 4वीं-5वीं शती ईस्वी माना जाता है। बादामी के पहाड़ी दुर्ग पर कृष्ण जन्म, पूतनावध, शकटभंजन, कंसवध आदि के दृश्य गुफाओं में उत्कीर्ण हैं। इनका निर्माण 6वीं-7वीं ईस्वी माना जाता है। संपूर्ण कृष्ण साहित्य में गोपी कृष्ण का श्रृंगारिक संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण साहित्य के विशाल प्रासाद के आधारभूत सामग्री प्रायः यही है। गोपी कृष्ण का यत्किंचित भी श्रृंगारिक संबंध महाभारत में अप्राप्य है। सभा पर्व में शिशुपाल कृष्ण के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाता है, किंतु गोपियों के साथ उनके अनैतिक संबंध की वह कहीं भी चर्चा नहीं करता। महाभारत अनेक संस्करणों में यह पाया जाता है कि चीरहरण के प्रसंग में द्रौपदी कृष्ण को गोपीजन वल्लभ कहकर पुकारती हैं, और इस आधार पर महाभारत में भी गोपी कृष्ण के श्रृंगारिक संबंध का बीज ढूंढा जाता है। किंतु पूजा के प्रामाणिक संस्करण द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि उक्त स्थल प्रक्षिप्त है, अतएव महाभारत में गोपी कृष्ण का श्रृंगारिक संबंध कथामुपि सिद्ध नहीं होता। ऐसा लगता है कि गोपी कृष्ण का श्रृंगारिक संबंध श्रृंगार संतृप्त परवर्ती मस्तिष्क की अथवा भक्ति के क्षेत्र में विकसित माधुर्य साधना की उपज है। आभीरोप देवता की श्रृंगारिक कथाएं लोक में प्रचलित नहीं होंगी रही होंगी तथा उनका चरित्र में समावेश हो गया होगा। सर भंडारकर का कथन है कि आभीर जाति प्रारंभ में घुमक्कड़ थी और उनके समाज में नैतिक बंधन पर्याप्त शिथिल थे। ऐसी जाति के देवता के चरित्र में श्रृंगारिया के समावेश की संभावना अधिक है। यदि आभीरों के किसी देवता और उसके श्रृंगारिक चरित्र का प्रभाव न भी माना जाए तो भी यह संभव है कि स्वयं कृष्ण के चरित्र में भी श्रृंगारिकता के बीच बिंदु विद्यमान रहे हों, जो कालांतर में नाना कल्पनाओं में जुड़कर निरंतर विकसित होते गए। साहित्य में गोपी कृष्ण के श्रृंगारिक संबंध का उल्लेख सर्वप्रथम अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। इसका रचना काल ईसा का पहली शती माना जाता है। प्रथम शती ईस्वी में संकलित गाथा सप्तशती में राधा कृष्ण तथा गोपियों के श्रृंगार से संबंधित अनेक गाथाएं मिलती हैं। दक्षिण के आलवार भक्तों के साहित्य में गोपी कृष्ण के प्रेम प्रसंग के अनेक गीत मिलते हैं। इनमें नापिन्नाय नामक एक गोपी का मुख्य रूप से वर्णन है, जिसे लक्ष्मी का अवतार माना गया है। यह गोपी राधा का ही दक्षिण रूपांतर ज्ञात होती है। समय के साथ साथ गोपी कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं की दिनों दिन वृद्धि होती जाती है। हरिवंश पुराण का हल्ली शक नृत्य विष्णु और ब्रह्म पुराण में रास लीला का रूप धारण करता है। वहाँ किसी ऐन्द्रिक संबंध का अनुमान नहीं लगता, किंतु भगवत पुराण में रति क्रीड़ा का स्पष्ट उल्लेख हुआ है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में गोपी कृष्ण की रति क्रीड़ाएँ मर्यादा का निरंतर उल्लंघन करती हैं। गर्ग संहिता में विलास कला की अनेक लीलाओं का बड़ा विस्तृत चित्रण किया गया है। पुराण साहित्य के अतिरिक्त परवर्ती संस्कृत साहित्य में भी गोपी कृष्ण के उद्दाम श्रृंगार केली बढ़ती ही गई। उनके चरित्र में लालित्य एवं माधुर्य के साथ देवत्व का भी विकास होता गया। हाल की गाथा सप्तशती में गोपी कृष्ण की मधुर लीलाओं में भक्ति की झलक नहीं मिलती, किंतु 12वीं शती तक उनके देवरूप प्रतिष्ठा बहुत दृढ़ हो गई। इसका प्रमाण है लीला सुख का कृष्ण कर्णामृत, ईश्वरीपुरी का श्रीकृष्ण लीलामृत और जयदेव का गीत गोविंद आदि। 12वीं शती तक कृष्ण काव्यों की रचना प्राय मुक्तकों में हुई। कालांतर में कृष्ण चरित्र को लेकर प्रबंध काव्यों की रचना होने लगी। हरिलीला, यादवाभ्युदय, ब्रजबिहारी, गोपलीला, हरिचरित्र काव्य, मुरारे विजय नाटक आदि ऐसे ही प्रबंध काव्य हैं। कृष्ण के विषय में यह ऐतिहासिक सामग्री जो भी रूप उपस्थित करे, इतना सत्य है कि 10वीं शताब्दी तक कृष्ण न केवल विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में आनंद और माधुर्य के दो विशिष्ट गुण इस तरह समन्वित हो गए कि वे कृष्ण भक्ति की प्रेम मार्ग अनेक साधनाओं के आराध्य के रूप में स्वीकृत कर लिए गए। वस्तुतः ऐतिहासिक सामग्री कृष्ण के व्यक्तित्व को स्पष्ट करने में उतनी सहायक नहीं होती जितनी उनके मध्यकालीन कवियों द्वारा निर्मित भास्कर रूप को आच्छादित करने में। वैष्णव कवि कभी भी कृष्ण को ऐतिहासिक पुरुष मानकर नहीं चलता, वह उन्हें ईश्वर का साक्षात रूप और प्रेम धन विग्रह मानता है। परिणामतः उसकी भक्ति में काव्य तत्व के साथ ही साथ प्रणति और समर्पण का भाव भी सम्मिलित रहता है। उसके लिए कृष्ण श्रृंगारिक चेष्टाएं एक अद्भुत आध्यात्मिक अर्थ से ओतप्रोत दिखाई पड़ती हैं, जबकि इतिहासकार कृष्ण और गीता के कृष्ण दोनों को दो विरोधी चीजें समझकर व्यर्थ का विखंडनवाद खड़ा करता है। कृष्ण ने स्वयं ही रूढ़िवादी नैतिक परंपरा को, जो मानव चित्त के नैसर्गिक प्रेम भाव को अपनी क्रूर चट्टानों से अवरुद्ध कर दिए थी, तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने को धर्म की अविरोधी कामशक्ति कहकर इसी बात की पुष्टि की। धर्म विरुद्ध कामोऽस्मि भरतशर्म। कृष्ण वस्तुतः निषेध के रही अनुराग के देवता थे। उनका व्यक्तित्व समाज की रूढ़ी को तोड़ने और मानव चित्त को नैसर्गिक भावनामूलक शक्तियों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील कर्मों का आधार था। इसलिए कृष्ण के चरित्र को जब भी बने बनाए रूढ़िग्रस्त सांचे या दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश की गई, असफलता ही हाथ लगी। कृष्ण भक्ति की जो धारा कालांतर में माधुर्य रस से ओतप्रोत होकर वल्लभ राधा वल्लभ चैतन्य और निम्बार्क संप्रदायों में निरंतर प्रवाहित होती रही, उसका यदि आदि स्रोत भाषा काव्य में सर्वप्रथम विद्यापति की पदावली से निश्रित हुआ। विद्यापति के ऊपर अपने समसामयिक दरबारी जीवन, राष्ट्रील संस्कृति और श्रृंगारिक वातावरण का प्रभाव कम नहीं पड़ा, किंतु उनके समर्थ व्यक्तित्व ने इस पतनोन्मुख वासना की धारा को राधा कृष्ण के प्रेम के चित्रण के माध्यम से परिवर्तित करने का प्रयत्न भी कम नहीं किया। विद्यापति के कृष्ण को हम सभी अर्थों में तभी समझ सकते हैं जब कृष्ण के विषय में प्रचलित माधुर्य विषयक साधनाओं का सही रूप समझ सकते। कृष्ण और काम, वे दोनों ही एक ही तत्व के दो पहलू हैं, लौकिक अथवा प्राकृत मदन मदन है तथा अलौकिक और अप्राकृत मदन को कृष्ण कहा जाता है। इसी प्रकार कृष्ण साधना में कृष्ण मंत्रों की मूल शक्ति काम बीज कही जाती है। कृष्ण गायत्री और काम गायत्री में कोई अंतर नहीं है। शिव के दाहक तृतीय नेत्र से भस्मीभूत काम अनंग होकर और भी अधिक प्रभावशाली तथा साधक चित्त के लिए विकारोत्पादक सिद्ध हुआ। यह मदन कृष्ण के पुत्र के रूप में परिवर्तित होकर अर्थात माधुर्य के द्वारा परिष्कृत होकर प्रद्युम्न के रूप में वैष्णव व्यूह चतुष्टय का अंग बना। विद्यापति के कृष्ण पर विचार करते समय काव्य दृष्टि के अलावा उपर्युक्त आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि पर भी निरंतर ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण साधना में बहुत पहले से काम पूजा का समावेश दिखाई पड़ता है। गोपाल पूर्वतापीनोपनिषद में कृष्ण गोपाल यंत्र का उल्लेख है, उसमें काम गायत्री और काम माला मंत्र को बहुत ही महत्व दिया गया है। गोपाल यंत्र की मध्यस्थ कर्णिका पर काम बीज, अष्ट दलों पर तीन तीन अक्षरों के क्रम से 24 अक्षरों वाला काम गायत्री अर्थात काम देवाय विद्मेह पुष्पवाणाय धीमहि तन्नो अनंगम प्रचोदयात मंत्र के लिखने का विधान बताया गया है। पुनः प्रत्येक दल पर 6 अक्षरों के क्रम से काम कला मंत्र नमः काम देवाय सर्वजन प्रियाय सर्वजन सम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल सर्वजनस्य हृदय मम वशम कुरु कुरु स्वाहा ये लिखने की रीति बताई गई है। इन दोनों से स्पष्ट हो जाता है कि कृष्णोपासक कवि के लिए काम आराधना के बाधक तत्व के रूप में नहीं साधक शक्ति के रूप में मान्य था। विद्यापति ने इसीलिए अनेक बार काम पूजा का बार बार उल्लेख किया है। यह प्रकारांतर से कृष्ण पूजा के विधान का ही संकेत है। दाम चंपक काम पूजल कैसे कह हम मयन आराधव होइति बड़ी रति साती रे कत विघन जितल अनुरागिनी साधली मनमथ तंत्र यही मनमथ तंत्र है। विद्यापति ने जगत विजेता नृपति कामदेव की प्रशंसा में उसके ऐश्वर्य और शक्ति सम्मोहन का भी कई बार उल्लेख किया है। पहला तथो मनोहर बाजन बाजय जान जागे मनसीज भू परे। दूसरा भय गुरु काम सिखावय पाठ। तीसरा शुभ दिन आज राजपन मनमथ। चौथा मदन महारथ बाजन बाज। पांचवा कोकिल बोल साहर मार मदन पाउल जग नव अधिकार। छठा दुहतन कांपय मदन उछली रे। सातवां कुसुम सर रंग संसार सारा यह निरंतर मंगलमय है। इसका स्पर्श जड़ और चेतन को नई स्फूर्ति शक्ति और प्रेरणा से भर जाता है। मदन निरंतर सौंदर्य के संसार में तल्लीन दिखाई पड़ता है। पहला अपरूप रूप मनोभाव मंगल। दूसरा मदन मोती लिए पूजल इंदु। तीसरा केसर कुसुम करु सिंदूर दान जावतुक पावल माननी माल कौलय कैतुक नव पंचबान विद्यापति कविदृण करिभान। चौथा अरंग मंगल भेली कामनी कर घुकेली। इस लौकिक मदन को निरंतर कृष्ण के रूप रस रंग प्रेम और माधुर्य के से पराजित दिखाकर विद्यापति ने उनके अपराकृत मदनत्व को प्रतिष्ठित किया है। तब घर मदन मोहन तरुकानन लुट लुटई धीरज पुनि छोरी। दूसरा मदन सिंहासन कमल अरोहन मोहन रसिक सुजान। तीसरा दुह रूप लामनी मनमथ मोहन रखि नयन भोली जाय। चौथा रतिरन मदन पराभव मालन जय जय डिम डिम बाजे। इस प्रकार कवि विद्यापति ने मदन प्रसंग की व्यापक अभियोजना करके उसे राधा कृष्ण प्रेम में विसर्जित करने का प्रयत्न किया है। विद्यापति के कृष्ण सौंदर्य और अप्रतिम भंडार है। उनके अंदर जालिक शोभा ने संपूर्ण ब्रज को विवलित कर रखा है। उनकी त्रिभंगी छटा यमुना के तीर कदम वृक्ष के नीचे खड़ा होकर भुवन मोहन सौंदर्य से सबको बरबस अपनी ओर खींचने वाली मुद्राएं गोपियों के हृदय को नाना प्रकार के वैचित्र्यकारी भावों से उन्मत्त कर देती हैं। कृष्ण के इस रूप को राधा अपार्थिव अलौकिक और इतना नैसर्गिक मानती हैं कि उन्हें लगता है कि कहीं यह सचमुच सपना ही न हो। ये सख पीखल एक अपरूप सुनैत मानव सपन स्वरूप, ये रूप उनकी नारी चेतना को हर लेता है। वह इस अपरूप रूप को सांसारिक मर्यादाओं के बंधन के कारण एक निमिष सिर्फ आधे आलोचना से ही देख पाती हैं कि उनका मनमृग व्याध के विषम बाण से विद्ध होकर हतचेत शून्य सा हो जाता है। कि लाग को तुख देख लो सखी निमिष लोचन आद मूर मनमृग मरंग वेधल विषम बाण ब्याध। नील तरंगिन यमुना के तट पर कदम बकानन के बीच खड़े कृष्ण को देखने की लालसा रोके न सकी और उलट पुलट कर देखने की प्रक्रिया में चरण कांठों से विद्ध हो गए। ऐसा था इंद्रजालिक रूप जिसने प्रथम दर्शन में ही राधा के चित्त को प्रेम वैचित्र से भर दिया। विद्यापति इस दर्शन को क्या मानते हैं? क्या केवल सांसारिक रूप का दर्शन मात्र अथवा किसी पुण्य का उदय? सुकृति सुफल सुनहु सुंदरी विद्यापति मनसार कंस दलन गोपाल सुंदर मिलर नंद कुमार। कृष्ण की शोभा उसकी मुख छवि तो हृदय को अपहृत कर ही चुकी थी, उसके अमृत वचनों ने तो पीड़ा की सीमा ही तोड़ दी। ये मधुर शब्द कानों में पड़कर चित्त को जाने कितने अशांत बनाएंगे, इस डर से प्रथम संभाषण के समय राधा कान बंद कर लेती है। माधव बोलल मधुरी वाणी से सुनि मुदु मोय कान ताहि अवसर ठाम बाम भेल मरिधनो पंचबान। राधा को डर लगता है कि आज श्याम सुंदर इस रास्ते से आएंगे किंतु वे अपने आंचल में आरती नहीं सजा पाएंगी। वे दौड़कर उनके सामने खड़ी भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि आधा पद रखते ही नागरजन समाज टेढ़ी भाव करके देखने लगेगा। इसीलिए वे कृष्ण के पास पहुंचने के लिए गरुड़ से पंख और इंद्र से हजार आंखें पाने की प्रार्थना करती हैं। कृष्ण की ये सारी विशेषताएं उनके मन चित्त और प्राणों को बिना मूल्य खरीद चुकी थी और उस दिन जब पहली बार उन्होंने बांसुरी में राधा का नाम ले लेकर पुकारा तब तो राधा ने अपना सब कुछ प्रेम के दाव पर ही रख दिया। एक दिन हेरी हेरी हंसी हंसी जाए अरु दिन नाम धय मुरली बजाए। किंतु सबको अपने इंद्रजालिक सौंदर्य से आकुल व्याकुल करने वाला स्वयं भी अछूता ना रहा। भुवन मोहन कृष्ण राधा की मोहिनी से व्याकुल होकर यमुना तट पर विभ्रमित घूमते रहे, कभी पूरा देख भी नहीं पाए यह अतल निराशा, कभी कनकलता के समान पृथ्वी पर चलते हुए राधा की सुकोमल देह यष्टिका हल्का निरावृत आकर्षण कृष्ण को अर्थात अप्राकृत मदन को मदन के कुहक वाणी से वेदने लगा। गेली कामनी गजहु गामिनी बिहस पलट निहार इंद्रजाल कुसुम सायक कुह के वेल बननार। राधा के रूप से आकृष्ट कृष्ण प्रमत्त के समान वन वन घूमते रहे और प्रत्येक क्षण मुरली में राधा का नाम लेकर पुकारते और उनकी प्रतीक्षा में निरंतर पथ पर आंखें बिछाए बाट जोहते रहे। नंदक नंदन कदम्ब तरुतर धीर धीर मुरली बजाव समय सकेत निकेत बैसल बेरी बेरी बोली पठाव सामरी तोरा लागे अनुखन विकल मुरारी यमुना के तीर उपवन उद्वेलक फिर फिर ततह निहारी गोरस बेचय अबैत जाय जन जन पूछ वन मारी। वैष्णव कवि के लिए शुदेव के रूप का चित्रण सिर्फ काव्यात्मक उपलब्धि नहीं रखा बल्कि वह अपनी भावोपासना का सीधा आलंबन भी हो जाता है। वस्तुतः कृष्ण के भुवन मोहन रूप से राधा का ही नहीं बल्कि विद्यापति का मन भी विद्ध हुआ था। इसी कारण उनका एकमात्र नायक का रूप वर्णन न होकर उपासक का आराध्य भी बन गया है। राधा का वर्णन विद्यापति ने वैष्णव परंपरा के अनुसार आह्लादनीय मां शक्ति के रूप में किया है। परिणामतः कृष्ण की व्याकुलता को एक सामान्य व्यक्ति की कामुक विचित्रता नहीं समझना चाहिए। वैसे यह सत्य है कि विद्यापति की दृष्टि मांसल रूप पर ज्यादा तिकती थी और वे राधा कृष्ण के प्रेम के विभिन्न प्रसंगों की उद्भावना करते समय अपने समय के श्रृंगार वर्णन संबंधी रूढ़ परिपाटियों का भी निर्वाह करते थे। राधा कृष्ण के प्रेम में इसी कारण मध्यकाल की मूड परिपाटी सर्वत्र दिखाई पड़ती है, अर्थात कवि क्रमशः प्रथम दर्शन, स्वप्न दर्शन तथा अनुरागोदय का वर्णन करने के पश्चात द्वितीय प्रसंग की भी अवतारणा करता है। मंडन, सखी शिक्षा, उपालंब, परिहास आदि के भी अवसर आते हैं। साथ ही संभोग का विस्तृत वर्णन, मान तोड़ने के विभिन्न प्रसंग और पुनः विस्तृत रति क्रीड़ाएं, विप्रलंब की सभी दशाओं का यहाँ समावेश भी मिलेगा, यानी अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उत्कंठा, उन्माद, विपर्यास, व्याधि, जड़ता आदि का भी उन्होंने पुरस्सर वर्णन किया है। इन सभी प्रसंगों में कृष्ण का चरित्र किस रूप में विकसित हुआ है, इस पर हम आगे विचार करेंगे। विद्यापति के कृष्ण न केवल राधा के परम प्रिय प्रेमास्पद हैं, बल्कि स्वयं प्रेम की व्यथा को प्रत्येक क्षण भोगने वाले प्रेमी भी हैं। यद्यपि उनका प्रेम राधा के प्रेम की तुलना में बहुत निश्चल, गंभीर और मासूम नहीं प्रतीत होता, फिर भी विद्यापति ने प्रेमी कृष्ण के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया है। वे अपना प्रेम निवेदन दूति के माध्यम से राधा के पास भेजते हैं। यहाँ वह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यापति की राधा पर किया ही है, इसलिए द्वितीय प्रसंग की अवतारणा प्रेम के गंभीर वेदनात्मक स्वरूप को अतिशयोक्तिपूर्ण भी बना देती है। इसी प्रत्यवाय को दूर करने के लिए सूरदास आदि कृष्ण भक्तों ने राधा के स्वकिया के रूप में बदल दिया। जो भी हो, विद्यापति ने राधा के रूप से विद्ध कृष्ण की कारुणिक अवस्था का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। दूती कहती है कि वे यमुना के तट पर बैठे हुए निरंतर राई राई रटते आंखों में अश्रु बहाया करते हैं। वे सभी प्रकार की केली किरणाएँ छोड़कर अहर्निश भ्रमित चित्त विक्षिप्त की तरह ताकते हैं। उनका शरीर सर्पिणी के दंश से पीड़ित व्यक्ति के समान निरंतर तड़पता रहता है। वे बार बार कहते हैं, पुनः पुनः फिर सोई नयन जदि हेरवि पाओ चेतन ना, भुजगिरि दंश पुनः जदि दंसे तब ही समय विष जा। दूसरी ओर राधा की दुति उनके हृदय की दारुण पीड़ा का वर्णन कृष्ण तक पहुंचाती है। प्रेम विश्रब्ध होता है। गिरधारी की नटखट लीला यहाँ से शुरू होती है। वे कुंज भवन से निकलते कभी झटके से आंचल पकड़ लेते हैं, कभी नाना प्रकार के बहाने बनाकर राधा को रोकने की कोशिश करते हैं। विद्यापति ने इस प्रसंग में नौका लीला के दो पद दिए हैं, जिनसे कृष्ण के हास प्रयास और नोकझोंक का रूप सामने आता है। विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रथम मिलन के पूर्व सखी शिक्षा के माध्यम से कामशास्त्र में वर्णित उस पुराने परिपाटी का निर्वाह किया है, जिसमें प्रथम समागम की आशंका से भयभीत नवोढ़ा नायिका के विशंभण व्यापार सिखाए जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्रसंगों के चित्रण में विद्यापति आवश्यकता से अधिक रस ले रहे प्रतीत होते हैं, किंतु सखी शिक्षा और प्रतिक्रिया वाले प्रसंगों के अलावा कुछ ऐसे भी अंश अवश्य हैं जिनमें कवि स्थूल वासनात्मक धरातल से ऊपर उठकर चिन्मय मिलन के क्षणों को भी बांधने में सफल हुआ है। इन प्रसंगों में कृष्ण का व्यक्तित्व केवल एक विदग्ध नायक की भांति ही नहीं, प्रेम की रसानुभूति से प्रभावित व्यक्ति के रूप में भी चित्रित हुआ है। विद्यापति प्रत्यंतर कृष्ण के चित्रण में व्यंग्यात्मक रूप भी धारण कर लेते हैं, जैसे उठ उठ माधव के सुतसी मंद, कहन लाग देखु पुनमिक चंद। पुनः आती है अभिसार की रातें, किंतु वे चित्रण जितना राधा के प्रेम की दुर्निवारता का वर्णन करते हैं, उनका कृष्ण के समुज्जल प्रेम की अनन्यता का नहीं। वस्तुतः वे ने स्थलों पर एक दृष्ट नायक रूप में चित्रित किए गए। राधा का मान अवश्य कृष्ण के हृदय की पीड़ा, समुत्सुकता, आतुरता, प्रिया को मनाने की विविध चेष्टाओं को सामने ले आता है। यद्यपि यहाँ भी परंपरा अनुसार उन्हें छलिया रूप में ही चित्रित किया गया है। वे किसी पर नारी के साथ कभी रात्रि बिताकर जागी हुई लाल आंखें, सिर पर लगे जावक के चिन्हों और अधरों पर लगी लाली के साथ जब राधा के सामने आते हैं तो मान स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे स्थलों पर कृष्ण के चातुर्य का वर्णन उनके व्यक्तित्व में कोई वृद्धि नहीं करता। वे जब शिव पूजा में रात्रि बिताने के कारण लाल हुई आंखें तथा पूजा की रोरी से लाल भाल और अधर की बात करते हैं, तो यह नायक की चतुराई तो प्रकट करती है, प्रेमी के चित्त की अनन्यता का परिचय नहीं देती। मान तोड़ने के लिए उन्हें दो तीन लीलाएं भी करनी पड़ती हैं, जिनसे निश्चय राधा के प्रति उनके चित्त का गौरव भाव प्रकट होता है। वे योगी का वेश धारण करके मान रतन देई मोय की भीख मांगते हैं, उस समय मान की अवस्था में भी विरह से विदग्ध विक्षिप्त राधा की जटिला वधु की मंगल कामना से प्रेरित होकर जोगी को पहचान नहीं कर पाती, और जब दूसरी बार कृष्ण देव देयासिनी तंत्र मंत्र जानने वाले स्त्री के वेश में तथा कथित भूत बाधा से परेशान राधा को निरोग बनाने के लिए जटिला के घर पहुँचते हैं, तो एकांत मिलन तो हो पाता है पर मान नहीं टूटता। परिणामतः वीड़ा वादनी जंत्री के रूप में तीसरा प्रयत्न करते हैं। इस बार चातुर्य ने ही प्रेम की पीड़ा ज्यादा उभर कर सामने आती है। दर्द की व्यथा से गूंजती हुई वीड़ा की आवाज़ सुनकर राधा स्त्री रूपधारी कृष्ण को पास बुलाती है। राई क निक बजाउल सुंदरी सुनैत भई गेल साधा, ए नव यौवन नवीन विदयसिनी आओ पुकारें राधा। जो कार्य प्रदर्शनात्मक चातुर्य नहीं कर सका वही निर्भ्रांत वीड़ा के मधुर स्वरों ने कर दिया। राधा प्रेम से गदगद होकर बोली, ऐसे ही व्यथापूर्ण राग रागिनी मेरी कान्हा भी बजाता है। और तब धनिक हतु गुण रीझ प्रसन्न भेल मांग है मानस जोय मनोरथ कर्म जाँचल जति सुंदरी मन मान रतन दे मोय हसमुख मोड़ पीठ दे बैसल कान कैल धनिकोय टूटल मान बढ़ल कत कौतुक भूपति के करु ओय। और इसके बाद आता है पुनः विश्रभ प्रेमियों का लीला विलास, जिसमें कोई संकोच नहीं, सीमा नहीं, मर्यादा नहीं। प्राकृत मदन अपने पूरे दलबल के साथ बसंत ऋतु की पद भरी रातों में और प्राकृत मदन पर आक्रमण करता है, और नव नव ताबियां पल्लवों से सम्मुलित नव वृंदावन के नव तट पर नवल बसंत के नवल मनयानिल में, जहाँ नव फूलों के नव पराग के मतवाले मधु गुंजार कर रहे थे, नवल रसाल मुकुल मधुमत्त कोकिल गान कर रहे थे, नवरस से निमज्जित नवल कानन में नव यौवना गोपियों के मंडल से गिरे नवल किशोर अपनी नवल वरनागरी राधा के साथ नवरस संयुक्त राम में तल्लीन हो गए। यही था वह स्थल जहाँ प्राकृत मदन की सारी चेष्टाएँ व्यर्थ हो गईं और वर्षों से प्रज्वलित प्रेम की आग अमृत की धारा से बुझ गई। रसिक रसराज का संयोग इन चरम बिंदु पर पहुँचने पर अपार विरह में बदल गया। कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए। विद्यापति का विरह वर्णन कृष्ण के चरित्र पर कोई प्रकाश नहीं डालता। विरह के माध्यम से राधा के प्रेम की अनन्यता, उदारता, निस्वार्थ समर्पणशीलता तथा गंभीरता स्पष्ट हुई है। हाँ, यह सही है कि विद्यापति ने कृष्ण को अभी उस विरह ज्वाला से अछूता नहीं रहने दिया है। वस्तुतः कृष्ण के हृदय की प्रतिक्रिया का चित्रण उन्होंने अपने नायक को कामकला पर धृष्ट चतुर नागर मात्र ही नहीं रहने दिया है। इसलिए जब कृष्ण ब्रज की यादें याद करके अपने भीतर के दुख को निश्चल ढंग से व्यक्त करते हैं, तो वे एक महत्वपूर्ण प्रेम को एकांगी क्रिया व्यापार अथच रसाव भास की स्थिति में परिणत होने से बचा लेते हैं। विद्यापति ने विरह वर्णन में भ्रमर गीत का कोई स्थान नहीं रखा है। एकाध पदों में उद्धव शब्द का यूं ही प्रयोग हो जाता है। इस कारण कृष्ण को उपालंब देने के वे सभी प्रसंग जो परवर्ती कृष्ण भक्ति काव्य में बहुत विस्तार से चित्रित हुए हैं यहाँ छूट जाते हैं। इसका विद्यापति के कृष्ण के व्यक्तित्व पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे यहाँ कितब छलिया स्वार्थी रसलोभी भ्रमर वृत्ति के चंचल स्वभाव वाले व्यक्तित्वों से वशीभूत विभूषित नहीं हो पाते। विद्यापति ने कृष्ण के चरित्र की एक और दृष्टि से उभारने का प्रयत्न किया है। कृष्ण को ब्रज की स्मृति में उन्मन और उदास तथा राधा के अनन्य प्रेम का स्मरण करके पश्चाताप करते हुए दिखाकर उनके व्यक्तित्व को निश्चय ही ऊंचा उठाया है। उनको अपना राज्य ऐश्वर्य तथा दूसरी रमणियों के साथ संबंध अत्यंत दुखद प्रतीत होने लगता है और वे इन स्थितियों में विरक्त के समान जीवन व्यतीत करते हैं। से बुढ़ी रात दिवस नहीं भाषय ताहि रहल मन लागी आन रमन सह राज संपद मोय आधी जैसे विरागी। यो यमुना के तीर पर हुई रासलीला को याद करके चमत्कृत चित्त होकर अत्यंत उदास हो जाते हैं और बार बार अपने वैभवपूर्ण राजधानी अपनी नई नागरिकाओं के साथ समुपस्थिति विलास की सारी संपदा को राधा के बिना बाधा के समान मानते हैं। सजनी कोन सरी जीवय कान राही रहल दुर हम मथुरापुर इतहु सहे परान ऐसन नगर ऐसन नव नागरी ऐसन संपद मोर राधा बिनु सब बाधा मानिए नयनन तेजिय नोर। कृष्ण की यह दशा कवि विद्यापति को भी यह कहने के लिए विवश कर देती है, कह कवि शेखर अनुभव जनलो बड़क बड़ई प्रीत। विद्यापति ने अंत में कृष्ण के चरित्र को और भी अधिक ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया है जब वे पुनः अपने विरहणी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए ब्रज वापस ले आते हैं। यह दुरंत दुखदायी दुर्निवार विरह अंत में मिलन में बदल जाता है। राधा की अतल स्पर्श ने व्यथा जिसको दाहक ज्वाला से संपूर्ण वृंदा विपिन सूख गया था पुनः पल्लवित और पुष्पित हो उठा। दोनों के लिए दुर्लभ दोनों का दर्शन अपनी अजस्र धारा में विरह जनित सभी दुखों को बहा ले गया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर घंटों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। चिर दिन से बीह मेल अनुकूल रे, दुह मोह में हिरैत दुह से आकुल रे। यह मिलन प्रेम की सात्विक प्राकाष्ठा को उस समय छूता है जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों साथ हैं। लंबे अंतराल के विरह की सारी व्यथाएं भूलकर एक दूसरे के व्यवहार पर बिना किसी प्रकार का आरोप लगाए हुए, बिना कोई उपालंब दिए हुए, एक दूसरे की उदारतापूर्ण गुणों की चर्चा करते हुए एक दूसरे को देखते रहे। नयन नयन दुह बयन बयान, दुह गुण दुह गुण दुह गुण गान। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति में कृष्ण जीवन का अत्यंत सीमित क्षेत्र लेकर भी उसके रूप आकर्षण व्यवहारशील और प्रेम प्रतिदान की विभिन्न स्थितियों का चित्रण करके एक ऐसे नायक का निर्माण किया है जो सहज ही पाठक के मानसिक जगत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। विद्यापति ने कृष्ण जीवन की उन लीलाओं का जो असुरों के विध्वंस और सज्जनों के परित्राण के लिए घटित हुई वर्णन नहीं किया है। इस कारण कृष्ण के ऐश्वर्यमय शौर्यपूर्ण लोकरक्षक व्यक्तित्व का प्रस्फुटन नहीं हो पाता। उन्होंने परवर्ती सूरदास आदि की तरह उनके अतिशय चित्ताकर्षक बाल रूप और बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यापति ने प्रेमी कृष्ण को ही अपना लक्ष्य बनाकर पूर्ण काम लीला अवतार के जीवन के एक अंश मात्र को चित्रित किया। यह भी सही है कि उनका यह चित्र कई स्थलों पर तात्कालिक रूढ़ परिपाटी के कारण कृष्ण की काम विदग्धता को ज्यादा उभारता है, किंतु समूचे स्थूल रति प्रसंगों और काम कला के विस्तृत वर्णनों के बीच भी कृष्ण का एक ऐसा चरित्र अवश्य उभारता है जिससे मानसिक अनुराग, उच्च कोटि का आनंदमय मदन विलास था, अपनी अभिन्न प्रेमिका के प्रति निरंतर वदान्य, कृतज्ञ, वंशवत, आस्थापूर्ण और सदा अनुरक्त बने रहने की संकल्प सदिच्छा सदैव विद्यमान रहती है। विद्यापति के कृष्ण की असहज मानवीय अनुरक्ति उन्हें उस स्थान पर बिठा देती है कि वे चैतन्य से लेकर मीरा, सूर और बाद के अनेकानेक कवियों के लिए प्रेम साधना के अचिंत्य, प्रण ताल, चितरंजक आराध्य के रूप में प्रेरणाप्रद, अभय वारद, मुद्रा वाले, प्रियति प्रिय, परम दैवत बन गए। वैष्णव कीर्तन में विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के अलौकिक तन्मयता के साथ गाए जाने के पीछे यही रहस्य छिपा है। वे जनभाषा में कृष्ण पर काव्य लिखने वाले पहले व्यक्ति थे और इनमें संदेह नहीं कि उन्होंने राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के चरणों में जो मानसिक वाकरूप पुष्पार्चन निवेदित किया वह बाद के कवियों, भक्तों और साधकों के लिए प्रेरणा का ज्योतिर्मय संबल और पाथेय बन गया।